हो हमारा अमन का गहवारा, झगड़े छोड़ो माफ करो फिर हो जाएगा घर तारा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हफ्ते मदनी चैनल पर आप, ये हमारा प्रोग्राम फैमिली काउंसलिंग यानी एक तरबियत ही है, काउंसलिंग है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं फैमिली में, तो ये प्रोग्राम हमारा हर हफ्ते आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माहिर नफ्सियात हमारे डॉक्टर जीरक साहब भी हमारे साथ होते हैं। इस वक्त भी डॉक्टर साहब हमारे साथ ही तशरीफ़ फरमा है। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह खुश रखे, बरकत अता फरमाए। डॉक्टर साहब माहिर नफ्सियात हैं और ये हमारा स्पेशली प्रोग्राम फैमिली काउंसलिंग है। फैमिली में, फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एहसास कमतरी। जी मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बहुत सारे लोगों में होता है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि बहुत सारे लोग अपने बॉडी पार्ट्स की वजह से भी एहसास कमतरी में आ जाते हैं। कद बहुत छोटा है तो एहसास कमतरी, और ज़्यादा लंबा हो गया बहुत कद तो उसमें एहसास कमतरी, बाज़ लोग अपने रंगत की वजह से, बाज़ों का चेहरा जिस्म या ऐसा है तो उसकी वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। पढ़ाई में पीछे रह गए, नंबर अच्छे नहीं आए तो एहसास कमतरी का शिकार हैं ये। ख़ानदान में या महल्ले में या रिश्तेदारों में कोई ऐसा फ़र्द है जो बहुत पैसे वाला है, हम उस तरह के नहीं, तो एहसास कमतरी का शिकार। अच्छे नंबर्स नहीं आए, स्पोर्ट्स में कामयाब नहीं हुए, इंटरव्यू में कामयाब नहीं हुए, बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो जो है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन एहसास कमतरी हो जाता है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि आज जो ये हमारा प्रोग्राम है एहसास कमतरी, हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू को डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, और फिर इसके जो जहन पर असरात पड़ते हैं और जो मनफी असरात पड़ते हैं और जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल या बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे इसके मामलात होते हैं। तरक्की नहीं कर पाता बंदा और फिर दूसरों से अपने आप को कमतर समझता है, फिर वो समझ लें कि इस तरह की फील्ड में जाकर बाज़ुकात तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बंदा सुसाइड भी कर लेता है, खुदकुशी भी कर लेता है, क्योंकि उसका ये माइंडसेट बन चुका होता है कि मैं तरक्की नहीं कर सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो अल्लाह पाक आफियत का मामला फरमाए, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का पॉजिटिव हल मौजूद है। तो एहसास कमतरी कैसे कम होगी? एहसास कमतरी तो है लेकिन इसको ज़िंदगी से ख़त्म करना है, ये ख़त्म होगी तो एहसास बढ़तरी होगी। ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो बंदा, बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं सीखते कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस हो हमारे अंदर, एक बंदे के अंदर विल पावर हो और मुकाबला करना आता हो, फेस करना आता हो, हिम्मत, स्ट्रगल और फिर जिनकी सक्सेस स्टोरीज है वो पढ़ें सुनें, तो मज़ीद हम डॉक्टर साहब से भी इस पर रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर साहब एहसास कमतरी ये बहुत सारे लोगों में होता है, बाज़ोकात तो बॉडी पार्ट्स की वजह से जो बंदा देखता ही रहता है। अच्छा, बाज़ोकात बार बार अपने आप को आईने में देखना, शायद मेरे ख्याल में ये भी एहसास कमतरी में आएगा ये, या अपनी चीज़ों को देखना कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ क्या। तो इसके खैर मुख्तलिफ पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, लेकिन स्टार्ट में एहसास कमतरी से मुतालिक हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को आप क्या बताएंगे?
देखिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारी जो भी इस फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम में जो आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें एक मैं समझता हूँ कि एक मेरा फेवरेट टॉपिक इस हवाले से कि इसके ज़रिए हम बहुत कुछ जो है वो सीख सकेंगे, क्योंकि ये एक बुनियाद है।
सही,
एक बुनियाद है हमारी नफ्सियात की, एक बुनियाद है हमारी सोच की। हम जो कुछ भी है ना, तो हमारी सोचें ही जो है वो डिटरमिन करती हैं कि हम आगे क्या करेंगे, क्या बनेंगे। तो ये मैं एक नफ्सियाती तज़िया पेश कर रहा हूँ कि हमारे जहन में जो सोचें हैं वही हमारी पर्सनैलिटी की अकासी करती हैं। जो जहन में होगा वही हमारी ज़बान पर आएगा। जो हम जो है वो सोचेंगे कि ये करना है तो वो हम करने की तरफ जाएंगे, और जो हम सोचेंगे कि ये मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं करना, वो हम नहीं करेंगे। सोच जो है ये मुहर्रिक है,
सही।
ये एक समझे कि सबसे पहली चीज़ है जो हमारे जहन में पैदा होती है, और इसके पीछे भी दीगर मुहर्रिकात, एक लंबी गुफ्तगू है। बहरहाल बुनियादी तौर पर सोच है। एहसास कमतरी का लफ्ज जो है ये असल में है नेगेटिव।
अच्छा, नेगेटिव है ये,
जी।
ठीक है।
इसका अगर मैं, आज तक मुझे इसका उर्दू में मुतबादल लफ्ज, मैं खैर कोई उर्दू अदब का माहिर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सही तरह से उर्दू का लफ्ज तो मिला नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम।
अच्छा, सेल्फ एस्टीम।
मैं थोड़ा वजाहत करता हूँ कि सेल्फ एस्टीम क्या है।
सही।
कि हम अपना जो एक जायजा लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत
सही।
फैमिली में क्या है, मुआशरे में क्या है, अब इस हवाले से, या मेरी स्किल्स क्या है, या दीगर लोग जो है वो मेरे हवाले से क्या सोचते हैं, ये जो मेरा अपनी ज़ात के हवाले से मेरा एक जायज़ा है, मेरी एक एनालिसिस है, इसको हम कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम। अब अगर ये मेरा जायज़ा पॉजिटिव है, मैं समझता हूँ कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा बनाया, मैं मुसलमान हूँ, इसी तरह जो है वो मेरी रीज़नेबल गुड लुक्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं, फैमिली वाले भी हैं, एक रिस्पेक्टेबल जो मेरी पोजीशन है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़े हों, तकरीबन 6 साल से जो है ना, ये हमारे अंदर जो है ये शऊर पैदा होना शुरू होता है कि मैं किधर बिलोंग करता हूँ, मुझे कोई मोहब्बत करता है नहीं करता है, तो ये तकरीबन 6 साल की उम्र से शुरू होना शुरू होता है।
छोटा बच्चा 6 साल का, उस वक्त से ये फीलिंग्स आ जाती
जी
हैं,
आना शुरू हो जाती
अच्छा,
है।
यानी बच्चे की फीलिंग आ जाएगी, वो भी
जी
एहसास कमतरी में बच्चा जा सकता है।
जी और अमूमन आप देखेंगे कि ये एहसास कमतरी की जो प्रॉब्लम शुरू होगी प्राइमरी स्कूल की एज से शुरू होगी।
अच्छा,
उससे पहले कोई भी नहीं डॉक्टर डायग्नोज करेगा कि भाई ये बच्चा एहसास कमतरी का शिकार है।
सही,
अलामत हो सकती हैं,
सही,
बच्चा घबरा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन जो है 6 साल से ये शऊर जो है नफसियाती तौर पर पैदा होना शुरू होता है कि मेरा अपना असेसमेंट, मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, क्या वैल्यू है मेरी। अब अगर ये मेरी ओवरऑल देखें, ये मनफी भी होगी कई सूरतों में, मसलन मेरा कद जो है वो बड़ा नहीं है, या मेरा वेट कम है या ज़्यादा है, कुछ मनफी भी हो सकती हैं और कई पॉजिटिव भी होंगी। और अगर मेजॉरिटी तौर पर मेरा अपने हवाले से मेरा जायज़ा असेसमेंट या मेरा अपना व्यू पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, जिसको आप उर्दू में खुद एतमादी का नाम
सही,
देंगे।
बिल्कुल सही।
और अब अगर मेरा ये असेसमेंट, मेरा ये व्यू नेगेटिव है प्रिडोमिनेंटली ज्यादातर, तो अब हम इसको बोलते हैं नेगेटिव सेल्फ एस्टीम, जिसको हम बोलते हैं एहसास-ए-कमतरी। लिहाजा ये एक स्पेक्ट्रम है, एक एंड पर खुद एतमादी है, एक एंड पर एहसास-ए-कमतरी है, और इस्लाम हमें एतदाल का दर्स
क्या
देता
बात
है
है, क्या बात है
कि
माशाल्लाह।
हमने जो है वो इस एक्सट्रीम पर भी नहीं जाना और इस एक्सट्रीम पर भी नहीं जाना,
यानी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और ना माइनस में जाना है नीचे।
तो ये एक यानी कि एज अ प्रोफेशनल जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है उसको, उससे मैंने एक बेस सेट की कि हमारी सोचों पर डिपेंड करता है, और इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम लेकर चलेंगे इन चीज़ों को।
क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 6 साल के बच्चा, यानी अमूमन 6 साल की एज से भी ये फीलिंग्स आ जाती है एहसास कमतरी, यानी अपने आप को किसी से कमतर समझना। इसमें मैं अपने पर्सनल तजर्बात भी यूँ शेयर करूँगा कि इसमें बाज़ औक़ात वालिदैन की भी भूल होती है, दानिस्ता ना दानिस्ता, कि किसी बच्चे पर ज़्यादा तवज्जो है, किसी पर कम है, किसी की तारीफ़ ज़्यादा, किसी की तारीफ़ कम, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको ज़्यादा डांटना डबटना। अच्छा, हो सकता है कि वो सबको यकसा रखते हों, लेकिन कभी तन्हाई में या अकेले में एक बच्चे को ज़्यादा डांट पड़ी, और कभी उसने अपने दूसरे भाई को या बहन को ज़्यादा प्यार करते हुए देख लिया। अब उसकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, जो डॉक्टर साहब ने फरमाई नेगेटिव थॉट्स हैं, उसकी मनफी सोच है, वो वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अगरचे वो बच्चा है, लेकिन वही सोचना शुरू कर देगा कि मेरे अब्बू जान, मेरी अम्मी जान, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे डैडी, मेरी मामा, ये जो ना मुझे लाइक नहीं करते, मुझे इग्नोर करते हैं। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ये बारीक लाइन है ये, तो ऐसा ना हो कि हमारे किसी रवैये की वजह से हमारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं, या घर में उनको डांटते रहें, झाड़ते रहें, झड़कते रहें कि आप नालायक हैं, आप पढ़ नहीं सकते, आप क्या करेंगे ये। बाज़ औक़ात टीचर्स भी सबके सामने स्टूडेंट को डांटेंगे, बेइज्जत करेंगे, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम क्या करोगे, तुम डफर हो। तो डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं, ये जो कैफियत है, मैंने तो एक माहौल बताया, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मकसद क्या करना चाहिए इस पर?
देखिए, ये एक बहुत बड़ा आपने रीज़न बताया कि सबसे बुनियादी तौर पर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने वाले या सेल्फ एस्टीम पैदा करने वाले उसके माँ बाप हैं।
सही,
ठीक है। और बाज़ सूरतों में तो लाशौरी तौर पर इससे भी पहले कई ऐसी चीज़ें माँ और बच्चे के दरमियान होना शुरू हो जाती हैं कि जिनका जो है वो 6 साल की उम्र से फिर इम्पेक्ट ज़ाहिर होना शुरू होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं ये समझूंगा तरबियत वालिदैन की तरफ से। अब तरबियत में एक बुनियादी, अगेन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं अर्ज़ करूंगा, हमें चाहिए कि बच्चा हमारे सामने जो भी काम पॉजिटिव या अच्छा कर रहा है या जो अचीवमेंट है उसको हम अप्रिशिएट करें, हर चीज को
हौसला अफजाई करें उसकी,
हौसला अफजाई करें कितनी ही छोटी क्यों ना हो।
क्या बात।
अब जैसे इसकी मिसाल देता हूँ, करते भी हैं वालिदैन, ये नहीं करते। छोटा बच्चा जब पहले अल्फाज बोलना शुरू करता
है, वाह वाह वाह, क्या बात है।
माँ बोला या बाप बोला या बाबा बोला, हमें कितनी खुशी होती। अब हम क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं, बोला मामा बाबा, इंटरेक्शन करते हैं, खुश होते हैं, स्माइल देते हैं, बच्चा स्माइल करता है। अब बच्चे को फीडबैक मिल रही है पॉजिटिव। अच्छा, आपने ना उसे, अब वो बच्चा 6 महीने का है,
सही, बिल्कुल,
आपने बोला भी नहीं शाबाश, लेकिन आपने उसकी नफसियात के मुताबिक उसके इस अमल को अप्रिशिएट किया, उसके लिए ये रिवॉर्ड हो गया, हौसला अफजाई हो गई, उसके लिए शाबाश है, उसके लिए ये वेल डन है, उसके लिए ये जो भी तोहफा समझ ले। अब देखिए नफसियाती तौर पर अब ये बच्चा और ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा ताकि माँ बाप की तवज्जो मिले।
क्या बात।
और बच्चे इसी तरह सीखते हैं।
सही।
ये हर वालिदैन मुझसे एग्री करेंगे कि हाँ, छोटी उम्र में अप्रिशिएट करते हैं, जो जो उम्र बढ़ती जाती है अब हम अप्रिसिएशन की तरफ कम और जो काम उन्होंने नहीं किया उसको क्रिटिसाइज करने की तरफ ज्यादा। तो एक तो यानी कि एक बेसिक फार्मूला है कि भाई आप मसलन बच्चा आपके लिए पानी लाया है, आप उसको अप्रिशिएट करें, हर बार करें। बच्चे ने आपकी बात मानी, आप उसको अप्रिशिएट करें, हर बार करें। इसी तरह बच्चे ने होमवर्क किया, अब जो भी आप जितना ले रहे, आप यकीन करें कि आप जो है वो जैसे वो है ना हमारे दीन में कि जानवरों को जो है वो दिन में 70 बार जो है वो खाना खिलाओ या पानी पिलाओ, तो इसी तरह हमें बच्चों को दिन में 70 बार यानी मुहावरतन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो एक तो हमारी ये कमी रह जाती है कि जो जो बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है तो हम अप्रिसिएशन को भूल जाते हैं और क्रिटिसिज्म को ज्यादा जो है वो अपना लेते हैं। तो जब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही नहीं किया, तुम इतने बड़े हो गए, तुम जो है वो अभी तक ये नहीं कर सकते, कोसने मिलते हैं ना, तो अब बच्चे में सेल्फ एस्टीम की जो है वो प्रॉब्लम आती है। इसमें मैं एक अगेन फिर एक जाती तजुर्बा शेयर करूंगा, क्योंकि बाज़ दफा क्या होता है कि किताब से उठाई हुई चीज बंदे कहते हैं यार ये तो हवा में जो है, ये रियलिटी में होती नहीं है। मेरा पहला बेटा उबैद अली उसका नाम है, माशाल्लाह 11 साल का हो गया है। तो ये जब छोटा था तो जुराबें पहनना इसने शुरू की। अब बच्चों को होता है कि जुराबें पहनने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सही तरह से आती नहीं, गालिबन 6-7 साल का था। तो अब जो है वो उसको सिखाया, कोशिश की। एक दिन मैं जल्दी में था, काम पे भी जाना था और इसे स्कूल भी छोड़ना था, आया तो इसने एक जुराब सही पहनी हुई और एक जो है वो ऊपर नीचे। अच्छा, अब मुझे आ गया गुस्सा कि इतनी बार सिखाया है और इसे अभी ये भी नहीं हो पा रहा। तो मैंने ना ये बोलना चाहा, तो मैं ना सोच के रुक गया। मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो बेटा माशाल्लाह आपने कोशिश की है और ये जो जुराब है ये कितने अच्छे तरीके से पहनी है, दोबारा कोशिश करें। और उसने कोशिश की और वो बिल्कुल सही हो गई। अब इसका असर क्या हुआ, मुझे भी खुशी हुई, अब उसका पूरा दिन स्कूल में भी अच्छा गुजरेगा। मतलब ये एक बजायर बड़ी छोटी सी मिसाल है, लेकिन क्या है कि आप हम एज अ पेरेंट बच्चे की पॉजिटिव चीज को इग्नोर कर देते हैं, मनफी चीज को जो है वो पकड़ के उसको फिर सुनाते हैं। एक ये बात, और दूसरी जो सेल्फ एस्टीम के हवाले से पेरेंट्स, अब यहाँ हम इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, हम एक फ़ायदे की अफादियत की अहमियत की बात कर रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को सीखें। अभी भी वक्त कहीं नहीं गया, नफ्सियाती तौर पर हम 70 साल के होंगे तो भी हमारी सेम नफ्सियात है, 4 साल के होंगे तो भी सेम नफ्सियात है, तो अभी भी वक्त कहीं नहीं गया। दूसरा होता है कंपेरिजन,
कंपेरिजन ठीक
है, कि हम मुवाजना करना शुरू कर देते हैं और अपने ही बहन भाइयों का मुवाजना करते हैं, उसने देखो ये कर लिया तुम क्यों नहीं ये कर सकते, वो तुम्हारी उम्र में था तो वो ये कर सकता था तुम ये नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, इस कदर नुकसानदेह है कि बाज़ दफा बच्चों की आपस में दुश्मनियां पड़ जाती हैं। और कितने यानी ऐसे मरीज पेशेंट्स मैंने खुद डील किए हैं कि बच्चे आपस में बहन भाई दुश्मन बन गए क्योंकि वालिदैन कंपेयर करते थे, वालिदैन जो बच्चा बताते खुद जो अच्छा था उसने कुछ नहीं इस बच्चे को बोला,
सही,
लेकिन बच्चों ने कहा जी उसके मार्क्स अच्छे आए, वो ये कर लेता है, वो यूं कर लेता है, इसका क्या है। देखिए हर बंदा एक इंडिविजुअल है,
सही,
उसकी अपनी जो है वो अल्लाह ने बनाया है, हमें मुख्तलिफ बनाया है, 5 उंगलियां सेम नहीं है, किसी का कद बड़ा है किसी का छोटा है, किसी की डिवेलपमेंट लेट होती है, किसी की डेवलपमेंट अर्ली होना शुरू हो जाती है, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अब हमें ये चाहिए कि हम कभी भी अपने एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करें ही ना, बहुत बड़ी गलती है ये, जिससे जो है वो चंद बार नफसियाती तौर पर देखा जाए ना, आप 3-4 बार करेंगे ना कंपेयर, अब बच्चे के जहन में फिक्स हो जाएगी।
सही,
तो लिहाजा कंपेरिजन हमें नहीं करना, हमें जो है पॉजिटिव चीज़ों को हर एज में अप्रिशिएट करना है, और ये दो बुनियादी चीज़ें हैं पेरेंट्स की तरफ से सेल्फ एस्टीम की।
क्या बात है, मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन आउट क्लास, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई ना कि यूं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से यूं कंपेयर ना करें कि उनकी नेगेटिव चीज़ों को बताएं तो यूं आप यूं रह गए यूं रह गए, इस पर मुझे अपना पर्सनल एक जगह में गया तो डॉक्टर साहब एक जगह जाके मैं बैठा तो कुछ लोग थे तो उनका एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा था जामियातुल मदीना में, तो उनके वालिद साहब जो है ना मुझे कहने लगे कि अली भाई इनको समझाएं कि पढ़ते नहीं हैं, ये जो घर में आके स्टडी नहीं करते, ये जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अब मैं मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन सोचने लगा कि बच्चे को समझाऊं कि इनके अब्बा को समझाऊं, क्योंकि अब्बा को भी सब के बीच में नहीं समझा सकते थे, कि एक बच्चा जो समझदार है बड़ा हो गया है, ये 6-7-8 लोगों के दरमियान ये बच्चे के फजाइल बता रहे हैं, बच्चे की मजम्मत कर रहे हैं, ये उसको मकसद हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो डॉक्टर साहब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो समझाने के नाम पर सबके बीच में एक तरह से अपने बच्चे को वो जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, वो बच्चा फिर वो एहसास कमतरी में चला जाएगा। ये इसी तरह जो आपने कंपेयर का बताया तो मुझे आया, क्योंकि हाथ के हाथ में अर्ज करता चलूँ, एक तो एहसास कमतरी है और एक एहसास महरूमी है। इस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि अपने बाज़ुकात बच्चे वालिदैन का या तो सलूक की वजह से या बाज़ुकात बच्चे कंपेयर करते हैं किसके साथ सलूक अच्छा या इसके साथ रवैया अच्छा, तो मैं अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को अपनी बहनों को अर्ज करूंगा कि देखें जो बच्चियां शादी होकर घरों पर चली गई, अल्लाह पाक उनके घरों को आबाद रखे, उनको सुखी रखे, और जिनकी शादियां नहीं हुई अल्लाह पाक अपने करम से उनको अच्छे रिश्ते अता फरमाए, उनके भी घर बस जाएँ। लेकिन देखें बाप का घर बाप का घर है, बाप की शफकत बाप की शफकत है, माँ माँ होती है, आप अपने ससुर को भी बाप का दर्जा दें, सास को माँ का दर्जा दें, लेकिन अपने ससुराल के माहौल को अपने वालिद और वालिदा के घर से कंपेयर ना करें। माँ आपके हाथ से प्लेट लेके बोलेगी मेरा बच्चा आराम कर ले मैं धो लूँगी, लेकिन ससुराल में शायद आपको ऐसा बिहेवियर ना मिले। घर के अंदर आपका बाप जिसकी आप शहजादियाँ जिसकी लाडली जिसकी गुड़िया थी आप, तो आपकी धड़कन के साथ आपके बाप का दिल धड़कता था, लेकिन ये ससुराल है। तो अगर आप सोचेंगी कि यहाँ मुझे मेरे बाप जैसा प्यार नहीं मिल रहा, मेरी माँ जैसी शफकत नहीं मिल रही, आप ज़रा सा घर में कहती होंगी अम्मी सर में दर्द हो रहा है, तो अम्मी कहती होंगी बेटा आराम कर लो मैं तेल डाल दूँ सर में मालिश कर दूँ, लेकिन ससुराल में वो माँ नहीं आएगी। तो मेरी इस्लामी बहनों मेरी बच्चियों मेरी बहनों, तो ऐसा ना हो कि आप एहसास महरूमी का शिकार होकर फिर एहसास कमतरी में चले जाएं, फिर नेगेटिव थॉट्स मनफी सोचे आएं, फिर आप अपने ससुराल में अपने आप को कंफर्ट फील ना करें, देखें ससुराल ससुराल है, आपको वहाँ जाकर उनके हाल के साथ एडजस्ट होना है। फिर कभी मौका मिला तो फैमिली काउंसलिंग हम ये टॉपिक भी पूरा लेकर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने वो बच्चों का कंपैरिजन बताया तो मुझे फिर वो माँ बाप का घर और ससुराल का कंपैरिजन आ गया। डॉक्टर साहब डिटेल में तो हम करेंगे, ये भी पूरा एक टॉपिक है, क्योंकि कई नफसियाती मसाइल यूँ ही होते हैं। अच्छा बाप का घर था पैसे वाला, अच्छा फरावानी ससुराल में वो फरावानी नहीं मिली, अच्छा बच्चियाँ तो अपने माँ बाप के घर में बड़े कम्फर्ट जोन में होती हैं, होता है वो माँ बाप का घर ससुराल में वो कम्फर्ट जोन नहीं मिलेगा, तो यूँ घर टूट जाते हैं। तो फिर किसी मौके पर आपकी माहिराना राय इस पर लेंगे, लेकिन मुख्तसरन इस टॉपिक पर भी अगर कुछ आप बताएं। ये
जी बिल्कुल, अगेन ये फिर एक अब पहले तो वालिदैन कंपेयर कर रहे थे ना बच्चों को एक दूसरे से, और उसका जो है वो हमारी जात पर असर हुआ। अब यहाँ हम खुद कंपेयर करने वाले हैं कि भाई यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी नहीं थी, वहाँ ये आसानी थी, इधर ये मुश्किल है। तो अगेन जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि भाई हमारी नफ्सियात जो है ना, ये हम जितने भी हो जाए ना वो सेम ही है, बड़ी नाजुक है। और बिलखसूस इस्लामी बहनों के हवाले से, बेटियों के हवाले से आला हजरत ने भी फरमाया कि ये नाजुक शीशियां हैं।
नाजुक शीशियां,
तो मैं अगर इसको अपने साइकोलॉजी नफ्सियात के उसूल पे लिया जाए तो इनकी नफ्सियात भी बड़ी नाजुक होती है,
बहुत सेंसिटिव,
बहुत सेंसिटिव होती हैं इस्लामी बहनें। और ये अगेन शायद कहीं और तरफ हम ना निकल जाएं और कोई क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर ना हो जाए, लेकिन बाकायदा तौर पर हमारी नफ्सियात की किताबों में ये बात मौजूद है कि फीमेल नफसियाती तौर पर थोड़ा सा यानी कि उनकी डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। मैं मोहतात अल्फाज यूज कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन इनकी डिफरेंट होती है। इनकी इमोशनल अटैचमेंट अपने वालिदैन से और बिलखसूस बेटी की बाप से, ये हमारी नफसियात भी प्रूव करती है कि बेटी की बाप से मोहब्बत इस कदर होती है कि अगर इसके खावंद के जिस्म की खुशबू उस तरह की हुई या इसके खावंद का लिबास पहनने का अंदाज बाप की तरह हुआ तो ये फौरन दिल में उतर जाएगा।
क्या बात है,
ठीक है। तो ये क्या है कि फिर इसको अगर लेकर कंपेयर करेंगी तो जाहिर है प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगेन यहाँ पर हमारे लिए जो है वो ससुराल जिसमें गई है वहाँ ससुर साहिब और खुशदामन साहिबा के हवाले से भी कि भाई आप भी कोशिश करें कि इस कंपेरिजन की तरफ उसको जाने ना दिया जाए। और काम करना है तो 10 तरीके हो जाते हैं, काम हो जाता है, लेकिन अगर अल्फाज से हमने बोल दिया सर में दर्द है कोई बात नहीं है बर्तन वहीं पड़े हैं आपको ही धोने हैं,
सही बहुत प्यारी बात है,
तो बंदा कहते बेटा आप गोली खा लें अभी, आप आराम कर लें, देख लेंगे बाद में। अब यही इस्लामी बहन हो सकता है गोली खा के 10 मिनट में खुद जो है वो बर्तन धो दे। तो हर चीज में जो है वो हमें सोचना है कि भाई हमें जो है वो किस तरह जो है वो गुड रिजल्ट क्रिएट करना है।
मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बात करते करते ज़िमनन हम चले गए थे बच्चियों की तरफ, क्योंकि वो औलाद का कंपैरिजन चल रहा था। तो फिर बच्चियां शादी होकर जब दूसरे घर जाती हैं तो फिर वो अपने वालिद के घर से वो कंपेयर करती हैं अपने ससुराल को। तो ज़रा सा हमने टॉपिक टच ले लिया है, ये पूरा एक टॉपिक है कि बच्चियाँ ससुराल के अंदर कैसे अपना घर बसाएँ, जो सास ससुर बन जाते हैं इनका बिहेवियर क्या हो, बहू का क्या हो, सास का क्या हो, पूरा एक टॉपिक है ये। तो फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि है ये फैमिली काउंसलिंग तो ये भी पूरी काउंसलिंग है। मैं आपको वाकई मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन अर्ज करूँ, जब ये टॉपिक चला है ये कि दामाद को कैसे डील करना है, अच्छा बहनोई को कैसे डील करना है, ससुर को कैसे डील करना है, इसी तरीके से सास जो है बहू को कैसे डील करना है, बहू ने सास को कैसे डील करना है, ये पूरी एक नफसियात है। और डॉक्टर साहब हमारे हैं माहिर नफसियात, तो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत हम टच देके फिर दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एहसास कमतरी, तो एहसास कमतरी बहुत सारी वजूहात पर होता है डॉक्टर साहब। फीमेल्स के अंदर बच्चियां हैं लड़कियां हैं तो ये तो ज़ाहिर बात है अगर शादी नहीं हुई तो वो भी इनकी एक एज होती है, जब जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो इनको बनने संवरने का बड़ा शौक होता है। अब अच्छा अगर जैसे इंसान को अल्लाह ने बनाया जैसा उसका रंग रूप है, जो उसका कलर है, जो उसकी बॉडी के पार्ट्स हैं, सब अल्लाह ने बनाए, लेकिन वही वाली बात है कंपेयर वाली, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब वो अपने से ज़्यादा खूबसूरत को देखे, अपने से ज़्यादा अच्छी रंगत वाले को देखे, अपने से अच्छी वाली हाइट को देखे, अच्छा जो इंसान के जिस्म के आज़ाएँ बॉडी पार्ट्स वो देखे, तो बस बच्चियाँ जो है ना शादी से पहले, शादी के बाद का दूसरा मामला है। तो इस पर तो आपकी ज़बरदस्त वो ज़रबत है, आप एक डॉक्टर हैं माहिर नफ्सियात हैं, तो इस तरह की बच्चियां जो अपने बॉडी पार्ट्स की वजह से ऐसे दाने निकल गए, अब सारा दिन वो अपना दाने देख रही है कि भाई ये कैसे रिमूव होगा, मैं कौन सी क्रीम लगाऊं, क्या करूं, तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, स्पेशली बच्चियाँ, मेरे ख्याल में टॉपिक सुनते हैं आप अलर्ट होकर बैठ गई होंगी कि डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या बताते हैं। तो सुनिए डॉक्टर साहब आपके लिए क्या बताते हैं। जी डॉक्टर साहब,
बहुत ही नाजुक पॉइंट है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। इसमें देखें, अगेन थोड़ा सा हमने पिछली एपिसोड में टच किया था कि हम कोशिश हमारी हम में हर एक में कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है। अब वो बाज़ दफ़ा कमज़ोरियाँ हमारे ज़ाहरी जिस्म में हैं और बाज़ कमज़ोरियाँ हमारी पर्सनैलिटी में हैं। और अमूमन पर्सनैलिटी की कमज़ोरी जो है ना, वो छुपी रहती है जब तक कि हमारी ज़बान नहीं खुलती या किसी से इंटरेक्शन नहीं होता।
सही।
और हमारे एक मुआशरे में भी ये कॉन्सेप्ट है कि ज़ाहरी लुक्स को देखा जाता है।
सही।
पहले तो यूँ समझ तो आती है और हम यानी कि इनसे इजहार हमदर्दी भी कर सकते हैं इस्लामी बहनों से, कि ज़ाहिर है कि एक मुआशरे में हमें ये कॉन्सेप्ट आजकल के दौर में दे दिया गया है कि खूबसूरत और हसीन और जमील,
सही बिल्कुल,
इस तरह की औरत होगी तो ही जो है वो हमारी जो है वो शादी कामयाब होगी। तो ये सबसे बुनियादी रूट कोज है इस प्रॉब्लम का, कि जड़ है। अब अगर हम दीन इस्लाम के हवाले से, मैं अगेन, काउंसलिंग हो रही है, देखें ये भी एक काउंसलिंग है, हम इसको नाम देते हैं फेथ बेस्ड काउंसलिंग।
सही।
और इसमें आप जो है वो अपने मजहब के हवाले से जो आपकी चीजें हैं उनको लेकर आप पेश करते हैं,
क्या बात है।
और आप यकीन करें कि ये एक प्रोफेशनली एक्सेप्टेड चीज है कि जो बंदा दीन के करीब ज्यादा होता है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम।
क्या बात।
तो अब देखें, अगर हमारे बिलखसूस इस्लामी भाई के हवाले से और इस्लामी बहनों के हवाले से हदीस मुबारक मौजूद है कि भाई जब भी शादी करनी है तो आप कौन सी चीजों को देखो,
क्या बात है, बहुत जबरदस्त।
उसमें जो हुस्न जमाल है उसके हवाले से तो कहा गया कि तुम्हारी नाक खाक आलूद हो, और हम किस चीज की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो अब देखें, जाहिरी तौर पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है।
सही बिल्कुल।
अल्लाह ने बना दिया जैसा बना दिया, अब क्रीम लगाएंगे टेम्परेरीली रंग गोरा हो जाएगा, लेकिन धोने के बाद तो वहीं पे हम आ खड़े होंगे। और असल में जो बुनियादी चीज है वो हमारा अखलाक है, वो हमारा करेक्टर है। इस अखलाक को, करेक्टर को हम सीख कर इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हमारी इस्लामी बहनें बिलखसूस इस हवाले से ये देखें कि भाई मैं जो भी ज़ाहरी तौर पर हूँ मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, हाँ मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, मैं अपना बोलने का तरीका चेंज कर सकती हूँ, मैं जो है वो अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ, मैं दूसरों को रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, मैं दूसरों की बात सुनकर समझकर फिर सोचकर उसका जवाब दे सकती हूँ, मैं जज्बात को अपने कंट्रोल करूँ, मुझे अपने अंदर स्किल्स पैदा करनी है। घरेलू मामलात में जो भी स्किल्स हैं, चाहे वो घरदारी के हवाले से हों, सफाई के हवाले से हों, खाना पकाने के हवाले से हों, आप ये सीखें, आप इनको परफेक्ट करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा।
क्या बात।
जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो इंशाल्लाह अजीज जो है वो ये चीजें आपको, अब देखें जब ये सेल्फ एस्टीम आ गई ना, सेल्फ एस्टीम इस तरह भी इम्प्रूव होती है कि जब मेरे अंदर एक स्किल आ गई, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहसियत मुसलमान हमें तो जो भी मिलता है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है,
बेशक
कि जो है वो मेरे अंदर ये भी अल्लाह ताला ने मुझे एबिलिटी दी, मुझे ये भी एबिलिटी मिली, मुझे ये भी नेमत मिली, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा।
सही।
अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने बाज दफा सोशली तौर पर देखा होगा कई लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन जाहिरी तौर पर या तो कद के हवाले से
सही
वो बहुत छोटे होंगे या कोई और एबनॉर्मैलिटी होगी, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने इस चीज को पसे पुष्ट डाला।
सही।
उनके अंदर जो स्किल्स थी उन्होंने उनको एनहांस किया।
सही।
तो आजकल तो वैसे भी स्किल एनहांसमेंट के नाम पर बड़े कोर्सेज होते हैं, तो हम अपनी स्किल्स को एनहांस करें। और देखिए सबसे बुनियादी तौर पर प्रोफेशनल भी हम इन चीज़ को कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स।
सही।
सॉफ्ट स्किल्स क्या है? आपके गुफ्तगू का अंदाज, आपको दूसरे को रेस्पॉन्ड करने का अंदाज, आपका अप्रिशिएट करने का अंदाज, आपका सुनने का अंदाज, और दूसरों से जो है वो आपका यानी कि एम्पथाइज करना, कि किसी की मुश्किल को सुनकर उसको समझना और उसको इस तरह उसे महसूस हो कि हाँ यार इसको मेरी भी प्रॉब्लम का एहसास है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम में हमें बड़े अच्छे तरीके से सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से जो हमें ये मिल सकती हैं, किसी भी जो है वो
क्या बात है,
यानी कि प्रोफेशनल कोर्स में
बेशक
नहीं मिल सकती। और मैं ये अगेन इसमें जो है वो ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने दोनों चीज़ें सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिले भी मुझे जो है 16 साल हो चुके हैं, और अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुजाकरों से जो कुछ सीखने को मिला और जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से इल्म दीन सीखने को मिला, तो उसको जब मैं अपने प्रोफेशनल स्टडीज से कंपेयर करता हूँ या जो साइकोलॉजी से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे ये कहने में ना मैं इसमें बायस हूँ और ना कोई और, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं ये दुनियावी तौर पर जो साइकोलॉजी है या जो है वो इन्हांसमेंट स्किल्स हैं ये उनसे बेहतर हैं, बल्कि बेहतरीन हैं। अब हमारे पास ये एक हीरा मौजूद है, लेकिन अगेन वही हमें एहसास से कमतरी है कि दीनी तौर पर हमें कोई बात कही जाएगी तो उसकी वैल्यू नहीं है, कोई गैर दीनी बंदा वही बात कह रहा है तो उसको हम कबूल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है वो अल्टीमेटली अगर मैं सवाल की तरफ वापस आऊं तो यही है कि देखिए, हम अपनी इस्लामी बहनों को चाहिए कि आप अपनी इन स्किल्स पर फोकस करें, चाहे आप में हुस्न जमाल है या नहीं है। हुस्न जमाल भी होगा और ये स्किल्स नहीं होंगी तो भी आपका रिलेशनशिप जो है वो प्रॉब्लम्स का और मसाइल का शिकार होकर वो टूट भी सकता है। और अगर ज़ाहिरी हुस्न ना भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर अखलाक है, सब्र है, हिल्म है और आपके जज्बात कंट्रोल करने की जो है वो है और मसाइल को हल करने की एबिलिटी है, तो आप एक सक्सेसफुल जो है वो माँ भी बनेंगी, सक्सेसफुल बीवी भी बनेंगी, सक्सेसफुल जो है वो बहन भी बनेंगी।
क्या बात है, क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आपने डॉक्टर जीरक साहब की बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू ये सुनी है कि जो हमने सवाल किया था कि हमारी इस्लामी बहनें, हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां, ये फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, ये बाज़ औक़ात बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपने हुस्न जमाल की वजह से या बाज़ औक़ात रंगत की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट्स करती हैं। ठीक है, जायज़ तरीके से जो भी शरई हदूद है उसमें रहकर करें, लेकिन डॉक्टर साहब ने कितनी प्यारी बात बताई कि ये सिर्फ एक चीज़ है। ठीक ना, हुस्न, खूबसूरती या दाने निकल गए या रंगत, जो भी है बॉडी पार्ट से, जो भी है इंसान का, ये सबसे पहले तो मुसलमान ही ये सोचेंगे ये अल्लाह ने बनाया है। और फिर सिर्फ ये एक ही चीज़ तो नहीं, अच्छा ये है बहुत अच्छी है, आपका अखलाक अच्छा नहीं, आपका किरदार अच्छा नहीं, आपकी गुफ्तार अच्छी नहीं, आप काम के नहीं हैं, आप सुस्त हैं, आप लेजी हैं, आप चिड़चिड़ेपन वाले हैं, आप गुस्से वाले हैं, तो आपका हुस्न क्या करेगा? तो दोनों अल्लाह अता फरमा दे, तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तूने मेरी सूरत भी अच्छी बनाई, मेरी सीरत भी अच्छी बना दे ये। लेकिन अपनी और स्किल्स को डेवलप कीजिए, आपने घर संभालना है, आप बेटी का भी रोल अदा करती हैं, बहन का रोल भी अदा करती हैं, माँ का रोल भी अदा करती हैं, सास का रोल भी अदा करती हैं, बहू हैं, बीवी हैं, माँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, एक औरत के कितने सारे जो हैं वो एक रिश्ते हैं। तो मैं अपनी इस्लामी बहनों से अर्ज़ करूँगा कि आप अपनी दिगर और सबसे बढ़कर तो दीनदारी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि दीनदारी हो और दीन है तो सब कुछ है ये। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है एहसास कमतरी, वाकई ये एहसास कमतरी कई लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता, नहीं आगे बढ़ने देता, ना पढ़ाई में, ना अगर जिस फील्ड में भी हो, बिजनेस में, जॉब में। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि प्रोग्राम हमारा एंड की तरफ है, हमारा जो ड्यूरेशन है वो कुछ एंड की तरफ आ रहा है, तो मुख्तलिफ पहलू ज़िंदगी के, जैसे कोई जॉब कर रहा है, अब उससे कोई अच्छा स्किल पर्सन है, उसे अच्छी जॉब है या अच्छी पोस्ट पर है, मैं ऐसा नहीं बन सकता, मुझसे नहीं हो सकता। इसी तरह दीनी तौर पर है अगर कि यार ये तो बहुत नेक आदमी, मैं ऐसा नहीं बन सकता, या दीनी माहौल में आ गया वो, अब अगर उसने बोला यार मैं दाढ़ी रख लूँगा, इमामा पहन लूँगा, तो मेरी मुआशरे में क्या होगा? अच्छा, कोई खातून है, इस्लामी बहन है, वो सोचती मैं पर्दा कर लूँगी तो मैं माज़ल्ला माज़ल्ला पुराने दौर में चली जाऊँगी, लोग क्या कहेंगे ये? तो इस तबके को डॉक्टर साहब आप क्या समझाएंगे?
ये जो है वो इसमें मैं थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ भी आता हूँ। ज़ाहिर है बहुत सारी हमने डिस्कशन भी की, इसी में इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएगा
सही
कि चले, अब ज़ाहिर है बच्चे तो इस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे,
सही
ये बेसिकली तो बड़ी उम्र के
सही
नौजवान ये समझेंगे। तो अब हमें करना क्या है, हमें कैसे जो है वो हम एहसास कमतरी को, लो सेल्फ एस्टीम को जो है वो ख़त्म करें? तो देखें, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप जो है वो अपनी एक लिस्ट बनाएं कि आपने कौन कौन सी चीजें अचीव की हैं।
सही,
ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है, मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया।
सही।
अच्छा, मैं कहूंगा भाई आप बोल सकते हैं।
क्या बात है, क्या बात है, वाह।
बोलना सीखा है ना आपने।
सही।
आप वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, चलना सीखा है भाई आप।
वाह भाई वाह।
स्किल है, कुरान पाक पढ़ लेते हैं, मेहनत की है, सीखा है। अच्छा, फिर यूं करते करते तो अच्छा भाई आपने, अच्छा इनमें से अक्सर वो होते हैं कि जिन्होंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया होता है लेकिन कहते हैं नहीं मेरे 90% नहीं आए,
सही
89% आए।
सही
भाई, वो भी अब एक दफा, एक ये बच्चा है कि जो 89% आने पर बिल्कुल खुश नहीं है।
सही।
और एक बच्चा है जो 60% आने पर पास होकर तो मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं,
उसको खुश है ना, मैं फेल हो जाऊंगा तो वो तो सोच रहा है मैं चलो 60 पे निकल गया मैं।
जी जी। तो अब ये चीजें क्या हैं कि आपको असल में करना ये होता है कि आपको नॉर्मली प्रॉब्लम होती है कि हम एक गोल सेट करते हैं कि भाई ये मेरी गोल है, ये मुझे अचीव ही करनी है। हमारा ये होना कि ठीक है गोल सेटिंग होनी चाहिए और हाई से हाई होनी चाहिए, जितनी हाई आप गोल सेट करेंगे उतना अचीव ज्यादा करेंगे, लेकिन अब गोल सेट की है तो उस तक पहुंचने के लिए ये जंप तो नहीं है ना।
सही।
ये स्टेप है।
सही।
आपने हर स्टेप प्लानिंग करनी होती है कि भाई मुझे जो है वो इस स्टेप को पहले लेना है, फिर इससे मैं दूसरे पर जाऊंगा, फिर तीसरे पर जाऊंगा। अब इस स्टेप के लिए मुझे ये स्किल चाहिए, डेवलप करनी है, अब उसको डेवलप करें, सीखें, अगले स्टेप पर जाएं। अब बेसिकली जो शुरू में 2-3 स्टेप होंगे ना, ये होंगे मुश्किल।
सही।
अब बाकी जो है वो समझे के बड़ी आसानी से चीजें अचीव होना शुरू होंगी। यहां पर मैं एक बुनियादी उसूल पेश करना चाहूंगा, ग्रोथ माइंड सेट।
ग्रोथ माइंड सेट
जी, ये एक टर्म है,
ठीक है,
साइकोलॉजिकल टर्म है और नफसियाती तौर पर जो है वो इसको यानी कि बड़ी पावरफुल चीज है कि जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनमें खुद एतमादी होती है, जिनकी सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव होती है, वो अक्सर ग्रोथ माइंड सेट के होते हैं। इसका क्या मतलब है ग्रोथ माइंड सेट, कि बढ़ने वाला माइंड, अगर यूं देखा जाए बढ़ने वाला माइंड, तो इसका होता यूं है कि जब आप नया चैलेंज आ गया ना, तो ग्रोथ माइंड सेट वाला इसको पॉजिटिवली लेगा। अच्छा, ये कोई नई चीज आ गई है मेरे सीखने के लिए,
वाह।
अब वो इसमें कोशिश करेगा, अच्छा पहली कोशिश में फेल होता है तो कहेगा अच्छा मैंने क्या चीजें की जो जिसकी वजह से मैं फेलियर की तरफ गया, उनको असेस करेगा और उनको दोबारा नए सिरे से करेगा, उन कमजोरियों को दूर करके, और हो सकता है 3-4-5 मर्तबा कोशिश करके वो अल्टीमेटली अपनी गोल हासिल कर ले। तो ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि आप एक गोल तो सेट की, आप उसमें एफर्ट को लेते हैं कि मैंने कोशिश कितनी की, और कोशिश करते हैं और फोकस होता है कोशिश पर,
सही,
एंड रिजल्ट मिल जाता है।
क्या बात।
अब बच्चों के हवाले से भी बिलखसूस वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चे, ये भी एक वालिदैन की गलती होती है कि 90% क्यों नहीं आए एग्जाम में, जो बेसिकली कहा जाता है। अब वालिदैन को चाहिए, बाज़ वो खुद मेरा बेटा कहता है कि बाबा अगर मेरे इतने परसेंट मार्क्स ना आए तो आप मुझसे हैप्पी हो गए। मैंने कहा बेटा देखें, आप कोशिश करो, आपने अगर मैं आपकी कोशिश से सेटिस्फाई हूं ना, तो आप भले फेल भी हो जाना तो मैं आपसे खुश हूं, क्योंकि आपने कोशिश की और मुझे नजर आना चाहिए कि आपने कोशिश की और जितनी आप कर सकते थे उतनी की। अब हैसियत है बाप, मैं उसको पुश करूंगा, और अगर मैं एडल्ट हूं तो अब मैं खुद अपने आप को पुश करूं कोशिश करने। तो फोकस हमारा होना चाहिए एफर्ट, और इस एफर्ट से हमें घबराना नहीं चाहिए। नया चैलेंज आ गया है तो उसको लें, उसके लिए जो भी हमें सीखना है या किसी और से मशवरा करना है उसको करें। फेलियर से घबराना नहीं है, फेलियर है तो उसमें आप नोट करें, एनालाइज करें कि मैंने कौन सी चीज जो है ये गलत की, अब उसको ऐसे नहीं तो ऐसे करूंगा, और यही है रेसिपी फॉर सक्सेस फॉर एवरीवन।
क्या बात।
और जो एहसास कमतरी वाले होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम वाले, उनका क्या होता है, जैसे ही कोई नई प्रॉब्लम आई घबरा गए,
अच्छा
मैं नहीं कर सकता,
मैं नहीं कर सकता।
अच्छा, अगर किसी ने फोर्स किया भी ना कि नहीं करें और नतीजा नहीं निकला मैंने कहा था ना मैं नहीं कर सकता,
सही सही,
मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक फेलियर पर वो कहते हैं जी मैं तो सारी जिंदगी फेल होता आया हूँ,
सही,
सारी अचीवमेंट छोटी से छोटी अचीवमेंट भी भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज है कि हमें से जो भी इस वक्त भी सेल्फ एस्टीम, पुअर सेल्फ एस्टीम, एहसास से कमतरी का शिकार है, तो आप बनाएं लिस्ट अपनी पॉजिटिव चीजों की, आपने जो जो अचीव किया। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, कितनी अच्छी चीज है,
क्या बात,
आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कितनी बड़ी नेमत है, आप नाते सुनते हैं या नाते पढ़ते हैं, ये कितनी पॉजिटिव चीज है, आप बड़े बड़े गुनाहों से बचे हुए हैं, इस पर फोकस करें कि ये चीजें मेरे अंदर नहीं है, अल्लाह ताला जो है वो मुझे इन चीजों से बचाए। तो जो भी वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, आप मनफी सोचों में डूब रहे हैं, अब एक भी पॉजिटिव थिंग का भी मिलता है ना उसको पकड़ लें,
क्या बात,
ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। अपना काम कोशिश करना है, कोशिश करते जाएंगे कामयाबी इंशाल्लाह जो है वो
बहुत जबरदस्त। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे ना अभी कि इबादत सुन्नतें और अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, तो एक जानने वाले एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर बाई एयर ट्रैवल कर रहे थे, दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, तो अब वो इमामा शरीफ सर पे जुल्फें, सुन्नत के मुताबिक लिबास, तो शुरू में बड़ा हेजिटेट हुए, तो डॉक्टर साहब ये रियल एक वाकया है, तो अब उनको हुआ कि यार मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो एयरपोर्ट पे लोग किस तरह की हुलिये में होते हैं यूँ, और थोड़ा सा वो डिप्रेस हुए ना, ऐसा से कमतरी का शिकार हुए कि यार मैं बाई एयर जा रहा हूँ, ओवरसीज जा रहा हूँ, और ये एरोप्लेन में बैठूँगा। अच्छा, जब एयरपोर्ट पे गए तो इंटरनेशनल एयरलाइन में कई ऐसा मकसद है कि हर किस्म के लोग होते हैं, जब वो गए ना तो कोई किसी हुलिये में, कोई किसी हुलिये में, अजीब व गरीब ना, तो जब उन्होंने देखा ना तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लटकाया हुआ है, तो किसी ने कोई कुत्ता बिल्ला हाथ में लिया हुआ है, तो किसी के कपड़े पूरे नहीं हैं। थोड़ी देर वो सोचता रहा और सोच के मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन कहने लगा कि ये आधे कपड़ों में ये जा रहे हैं, अजीब अजीब चीज़ें लेकर ये, और मैं तो मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इमामे का ताज सर पर से जाके जा रहा हूँ, आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी मेरे चेहरे पर है, सुन्नत के मुताबिक मेरा हुलिया है, मैं किसी से कमतर क्यों, मैं तो आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता हुआ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब ये सोचना था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। इसी तरह किसी ने बताया कि मेरी फैमिली जो है वो पर्दे में थी, तो अब थोड़ा सा वो हुआ कि यार कैसे मॉडर्न लोग हैं, तो यहाँ पर तो जींसें पहनी हुई हैं, तो हाफ सिलीज, और क्या एयरपोर्ट का माहौल है, बाउल खुले हुए, वो बेचारे बहुत वो हुए। फिर ये हुआ कि यार शर्म मुझे आना चाहिए कि शर्म इनको आना चाहिए, जो मुसलमान है, मुसलमान तो शरीयत के पाबंद है। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन फौरन पॉजिटिव थिंकिंग आई कि नहीं, हम तो शरीयत पर अमल कर रहे हैं, पर्दा शरीयत ने बताया है, औरत को इस तरह पर्दे में रहने का जो हुक्म है, मैं पर्देदार हूँ, तो अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, तो मैं तो बहुत बेहतर हुई है। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ये हमने खुद पैदा करना होगा, अपनी पॉजिटिव चीज़ें खुद लानी होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त आखिर में जो सॉल्यूशन बताया, क्योंकि प्रोग्राम हमारा एंड की तरफ है, तो मैं उन्हीं बातों को रिपीट करूंगा कि रिपीट तो क्या करना है, बस आखिर में टच देता हुआ इसको लेकर जाऊंगा कि हम एंड करेंगे कि अब अपनी पॉजिटिव चीज़ें देखिए। सबसे बढ़कर तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी रहमत है कि हम मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथों में है, अल्लाह का पाक कलाम कुरान पर हमारा ईमान है, आखरत पर हमारा ईमान है, हम अल्लाह के बंदे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उम्मती हैं। फिर अपने बॉडी पार्ट्स देखिए, हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आँखें हैं ना, अल्लाह की नेमत है ना, उनसे पूछिए जो नाबीना है, कान है ना, जबान है ना, हाथ पाँव सलामत हैं, जिस्म का एक उज़्व भी अगर चला जाए ना तो शायद दुनिया में उसका वो ओरिजिनल अल्टरनेट ना मिल सके। अल्लाह पाक ने कितनी नेमतें दी हैं, तो मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि हर हाल में रब का शुक्र अदा कीजिए, जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक उसकी नेमतों में और इजाफा करता है। फिर दीनी मामलात में आगे बढ़िए, बाज़ औक़ात दुनियावी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार होकर हम दुनिया में पीछे जाते रहते हैं, दीन में आगे बढ़िए ना। देखें हाफिज़ कुरान पूरा कुरान हिफ्ज कर लेता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, अगर वो भी ये सोच लेता कि मैं कैसे हिफ्ज करूंगा, लेकिन अल्लाह पाक ने मदद की, कुरान पढ़ता रहा 30 पारे उसने हिफ्ज कर लिए। कितने ऐसे तलबा इकराम हैं जो आते हैं, 8 साल का दरस निज़ामी करते हैं, दौरे हदीस करते हैं, आलिम दीन बन जाते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं, मुफ्ती इस्लाम बन जाते हैं। तो दीन में आगे बढ़िए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, दावत इस्लामी के मुबल्लिग बन जाइए, दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीन का काम कीजिए, मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए, नेक आमाल पर अमल कीजिए, इस्लामी बहनें पर्दा इख्तियार करें, नमाजों की पाबंदी हो, तिलावत कुरान हो। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम आलिया से मैंने सुना ये कि एहसास कमतरी दूर करने का एक नुस्खा ये भी है कि आप बावजू रहिए, तो बावजू भी रहिए। उमूमन ये होता है कि हम कहीं जाते हैं वॉशरूम या बेसन पर, मुंह धो लेंगे, बाल थोड़े वो डस्ट लग गई तो बाल को भी हाथ लगा लेंगे, थोड़े हाथ भी धो लेंगे, बाजू का पाँव पर भी पानी डाल देते हैं। अब वजू में टाइम कितना लगेगा, मजीद काफ़ी बॉडी पार्ट्स तो आपने अपने धो ही लिए, तो सवाब की नीयत से वजू कर लें। बावजू रहेंगे तो खुद एतमादी बढ़ेगी। तो दीनी मामलात में आगे आइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, दुनियावी मामलात में भी एहसास कमतरी दूर कीजिए, और अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो डॉक्टर साहब अपने नाज़रीन से हम इजाज़त चाहेंगे।
मैं एक बात जो है वो एक बात मैं समझ रहा हूँ, अगर मैंने ये ना कही तो ये इंसाफ नहीं होगा कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल ये बजाते खुद एहसास कमतरी दूर करने का एक बेहतरीन जरिया है, क्योंकि जो इसका एक सिस्टम है, मैं खुद जैसे अर्ज की के तकरीबन 15-16 साल हो गए ना बयान करना आता था ना पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से कोई पता था, लेकिन इसमें एक पूरा सिस्टम है, ट्रेनिंग का सिस्टम है।
क्या बात, क्या
कि
बात?
आपको पहले छोटा सा ऐलान दिया जाता है करने को, दो जुमलों का, वो भी पब्लिक को फेस नहीं करना। मैं अगर इसका नफसियाती तजिया करूं तो ये भी कि जब आप किसी को फेस करते हैं तो बड़ा घबराता है बंदा, तो ऐलान छोटा सा करना है खड़े होकर चंद बंदों में, और वो भी फेस आपका उनकी तरफ नहीं होगा, आसानी पैदा हो जाती है ऐलान से। फिर आपको 7 मिनट के दर्स पर लाया जाता है, 7 मिनट के दर्स पे जब आपका हो जाए फिर आपको एक एज अ मुबल्लिग बयान के तौर पर लाया जाता है। तो बतदरीज जो है ये ट्रेनिंग दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, और इस माहौल में जो आपको प्यार और मोहब्बत और शफकत मिलेगी, इस्लामी भाई मुस्कुरा कर मिलेंगे, इस्लामी बहनें हों, इस्लामी भाई हों, सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, आपसे आपका हाल अहवाल पूछेंगे, आपको लगेगा यार मैं तो किसी और दुनिया में आ गया हूँ, यहाँ तो मेरी कदर और मंजिलत बहुत ज्यादा है। और ऐसा है, ऐसा है, अगर ठीक है आप ठीक है तस्वीर के दो रुख भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी तो यही है जो हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अगर आप एहसास महरूमी का शिकार हैं तो आप ये एक बेहतरीन जो है वो मदनी फूल कबूल फरमाएं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अगर वाबस्ता नहीं है तो आएं, ज्वाइन करें और इंशाल्लाह अपने एहसास महरूमी को दूर करें।
क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बिल्कुल एंड से पहले मैं भी एक बात करता चलूँ कि मैं पेरेंट्स से वालिदैन से अर्ज़ करूँगा कि अपने बच्चों को ये कहना छोड़ दें कि तुम नहीं कर सकते, ये कहिए कि तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं, आप करेंगे। और अपने आप से भी कहना छोड़ देंगे मैं नहीं कर सकता, अपने आप को ये कहिए कि मैं कर सकता हूँ, तो आपका एतमाद बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर अल्लाह पाक ने चाहा तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। फैमिली काउंसलिंग ये हमारा प्रोग्राम है, डॉक्टर ज़ीरक हमारे साथ होते हैं, देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
हो हमारा अमन का गहवारा, झगड़े छोड़ो माफ करो फिर हो जाएगा गर।